संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
128वां छंद बोलो।
पोगल जीवणि वद्धो धम्मा धम्मति काय कालड्ढो बट्ट दिया गाते जो लोगो सो सब काले दू आकाश में जो भाग पुद्गल जीव धर्म अधर्म से अर काल से समृद्ध वह सब लोक शेष अलोक है।
पहली गाथा में जीव और अजीव से भिन्न भिन्न बताया गया था। जीव अजीव को आपस में भिन्न भिन्न बताया गया था। एक द्रव्य है जीव और बाकी के पांच द्रव्य हैं अजीव। वो वर्गीकरण किया गया था। अभी दूसरे में आकाश संबंधी वर्गीकरण किया। इस आकाश संबंधी वर्गीकरण में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं आकाश के उस प्रदेश को इस जगत में लोक कहते हैं और बाकी का जो बचा है उसे अलोक कहते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। इस गाथा में और टीका में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिलाया गया है। अभी अपन पढ़ेंगे तो तुम ध्यान देना कि लोक माने अकेला वह आकाश का हिस्सा नहीं है जिसमें बाकी के पांच द्रव्य रहते हैं, बल्कि ये छह ही द्रव्य मिलकर उसका नाम लोक है। अंतर आया समझ में कि नहीं? पंडित दौलत राम जी ने भी वो भावना लिखी ना, लोक भावना, तो उसमें क्लियर लिखा है षड द्रव्यमयी। ये लोक है वो छह द्रव्यमय, छह द्रव्यों के समुदाय का नाम लोक है। आकाश का वो हिस्सा मैंने आकाश आधा है और बाकी के पांच द्रव्य सब हैं, इनको मिलाकर के लोकाकाश लोक है। अब अपन लोकाकाश कहते हैं तो जिसमें लोक है ऐसा आकाश का हिस्सा, ऐसा भी अर्थ आ जाता है, और दूसरी जगह वो अर्थ आ सकता है। अरे मैंने तो अपने बारह भावनाओं में एक पंक्ति लिखी है, आप लोगों का ध्यान हुए तो, कि जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। थोड़ा ध्यान दिया कभी, क्या मतलब इसका? अपना भगवान ही आत्मा ही लोक है। जिसमें छह द्रव्य झलकते हैं इस दृष्टि से आत्मा को भी लोक कहा जाता है। और ये भी सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, वो राजवार्तिक आदि किसी महान ग्रंथ में ये बात आई है और उसके आधार पर मैंने लिखा है। ऐसा आता है ना, यस्मिन षड्द्रव्याणि विलोक्यन्ते सालोका, ऐसा आया है इसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। लेकिन यहां जो लोक और अलोक का जो भेद कर रहे हैं, तो बाकी यदि हम इसे लोक यानी और अलोक लोक उसे कहें जो आकाश का वो हिस्सा है जिसमें बाकी के सही द्रव्य रहते हैं, यदि ऐसा कहें तो फिर हम दो भागों में कहां बांटा? वो प्रदेश लोकाकाश है और दूसरा बाकी का सवा लोकाकाश है। तो छह द्रव्यों को बांटना है ना हमें, तो दो में। शांति जी, ये मजबूत तर्क ये है कि हम जो इस तरह का वर्गीकरण कर रहे हैं वो छह द्रव्यों का कर रहे हैं। कि छह द्रव्य को हमने जीव अजीव में बांटा, छह द्रव्यों को हमने लोक अलेक में बांटा, छह द्रव्यों को हम पुद्गल अपुद्गल में बांटेंगे, माने मूर्ति कमूर्ति में बांटेंगे, है ना, और भी आएंगे अकाल अकाल में बांटेंगे। तो इस तरह से इस पूरी गाथा और टीका में आप गहराई से पढ़ेंगे तो सब जगह इस बात को बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया गया है। क्रमबद्ध पर्याय की किताब में मैंने अकाल का सबसे पहले अर्थ किया कि काल अकाल माने समय के पहले नहीं होता। सारी दुनिया अकाल का अर्थ समय के पहले मानती है कि वो काम अकाल में हो, अकाल मृत्यु हो गई माने जब होने थी तब नहीं हुई और उसके पहले हो गई। तो अकाल का अर्थ समय के पहले नहीं है उसमें सिद्ध किया। और ये कहा कि भाई पांच संवाय होते हैं, यहां तो पांच क्षेत्रभि की बात है, वहां पांच संवाय की बात है, तो पांच संवाय में ऐसे उनको भी बांटो कि एक काल और बाकी के चार अकाल, एक पुरुषार्थ और बाकी के सब अपुरुषार्थ, समझे ना, इस तरह से उनको भी बांटो। तो काल माने अकाल मृत्यु का मतलब क्या हुआ, समय के पहले मृत्यु का नाम अकाल मृत्यु नहीं हुआ बल्कि पांच संवायों में काल की मुख्यता से मृत्यु नहीं हुई, अन्य संवाय की मुख्यता से मृत्यु हुई। तो वहां दूसरी परिभाषा है कि पांचों से ही जब कोई कार्य होता है तो उसके पांचों संवाय मिलते ही मिलते हैं, और नहीं होता है तो पांचों ही नहीं मिलते हैं, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि एक नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तो फिर ये बात कैसे जमेगी, तो कहते हैं कि मिलते तो पांचों ही हैं लेकिन एक मुख्य रहता है, तो मुख्य कोई क्रिया में मुख्य नहीं रहता, उसका कोई पार्ट ज्यादा होता हो इसमें मुख्य नहीं है, अपने कथन में मुख्य रहता है। और उसकी अपेक्षाएं क्या होती है कि जैसे एक आदमी ट्रक के नीचे मर गया आके, तो हम कहेंगे इसमें निमित्त की मुख्यता है, तो यही कहेंगे ट्रक के नीचे आगे मर गया, बाकी चार उसकी आयु भी खत्म हो गई थी, उसको इसी काल में मरना था, इन बातों पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा मर गया। लेकिन जब हम देखेंगे कि वो आदमी बिल्कुल शांत था, स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी, कल परसों ही पूरी जांचें कराई थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल ओके बताया था और बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, और करते करते में खत्म हो गया, तो आप क्या कहेंगे, तभी उनका तो समय तो काल ही आ गया था। मतलब उनका कोई कारण हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, तो कहेंगे उनकी तो आयु के कर्म की काल खत्म हो गया था। तो ये ऐसी मुख्यता और गौणता कथन में आती है। वास्तव में तो कोई भी कार्य जब होता है तो पांचों संवाय मिलते ही मिलते हैं। अभी मैंने जो आकाश द्रव्य के बारे में आपको बताया, यहां एक अलोकाकाश एक लोकाकाश, तो लोकाकाश में लोक का अर्थ क्या है वो बताया, अब मैं पढ़ता हूं उस पर आप विशेष ध्यान देना। द्रव्यों का मैं टीका पढ़ता हूं, टीका, द्रव्यों का लोक और अलोक के रूप में वर्गीकरण अपनी विशेष विशेषता रखता है, क्योंकि लोक और अलोक के अपने विशेष लक्षण हैं, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। लोक का लक्षण सद द्रव्य समुदायात्मकता है, आ गया पहले ही वाक्य में, और अलोक का लक्षण केवल आकाशातात्मकता है। अब इतनी बात पहले क्यों समझाई, इसलिए समझाई कि यदि वो बात आपको नहीं बताई जाती तो ये पंक्ति बिल्कुल माथे पे से निकल जाती, और आपने जो पुराना अर्थ अपने दिमाग में जमा रखा है कि जिसमें सही द्रव्य रहे आकाश के उस हिस्से को लोक कहते हैं, उसी पे जमे रहते आप, अब आपको हर पंक्ति में वो दिखेगा क्या कि छह ही द्रव्य, वो षड द्रव्यमयी है ना, और ये अकेला आकाशमयी है अलोकाकाश, समझे ना। देखो सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले महान आकाश में जितने आकाश में, अब देखो गति स्थिति वाले जीव और पुद्गल गति स्थिति को प्राप्त होते हैं, एक तरीके से सब द्रव्यों की परिभाषा भी इसमें बता दी, गति स्थिति वाले जीव और पुद्गल,
गति स्थिति को प्राप्त होते हैं। दो दफे गति स्थिति लिखने की क्या जरूरत है
कि गति गमन करना और ठहरना ये उनका बिल्कुल पर्सनल स्वभाव है
और वो धर्म अधर्म द्रव्य तो निमित्त मात्र हैं। तो गति स्थिति बाले जीव और पुद्गल, ऐसा नहीं कि दो तरह के जीव होते होंगे, एक गति स्थिति वाले एक बिना गति स्थिति वाले, ऐसा नहीं है। मतलब एक तरह से वो ये बताने के लिए कि वो उनकी गति और स्थिति करना ये उनका स्वभाव है। आ गया था कि बाकी के द्रव्य निष्क्रिय हैं और ये सक्रिय है, तो सक्रिय किसी दूसरे के कारण थोड़ी है, है? हमें चलने धर्म द्रव्य की वजह से थोड़ी हम चलते हैं, अधर्म द्रव्य की वजह से थोड़ी हम चलते हैं। क्यों नहीं चलेंगे तो धर्म द्रव्य क्या कहेगा कि हमारा उपयोग ही नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल भी उधर का विकल्प नहीं होता है, क्यों? और वो निमित्त होता रहता है। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त होते रहते हैं, ऐसे कर्म का उदय भी निमित्त होता रहता है। हमें उधर ध्यान देने की क्या जरूरत है? ऐसे ही पड़ोसी भी निमित्त होता रहता है गुस्से आने में, है ना, वहां में उधर ध्यान देने की जरूरत क्या? लेकिन हम तो मानते हैं नहीं 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 साहब, निमित्त तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरक और एक उदासीन है। तो अपना जो पूज्यपाल आचार्य ने कौन सा ग्रंथ है, स्टोप देश में एक श्लोक लिखा है कि सभी द्रव्य गते धर्मास्ति कायवत्, जिस प्रकार गमन में धर्मास्ति काय द्रव्य उदासीन निमित्त है, तो सभी निमित्त उसी तरह उदासीन ही होते हैं। फिर एक समस्या खड़ी हो गई कि फिर दो भेद किए ही क्यों? मानो क्या जवाब दिया कि जो दूसरे पदार्थ गति स्थिति वाले हैं उनको प्रेरक कह दिया और जो गति स्थिति वाले नहीं हैं उनको उदासीन कह दिया। तो धर्म द्रव्य खुद गति नहीं करते हैं इसलिए उन्हें उदासीन निमित्त कह दिया। लोग एक उदाहरण देते हैं ना आजकल कि रेल की पटरी एक जगह जमी रहती है बिल्कुल, और रेल दौड़ती रहती है, वो उसमें कोई सहयोग नहीं करती है। और कोई दूसरी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि जिसमें वो ऊपर से दौड़े और नीचे की सड़क भी सहयोग करे, है? रेल की पटरी का ज्यादा उदाहरण देते हैं। तो देखो, सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले महान आकाश में जितने आकाश में गति स्थिति वाले जीव और पुद्गल गति स्थिति को प्राप्त होते हैं, उनकी गति स्थिति में निमित्त भूत धर्म अधर्म द्रव्य व्याप्त होकर रहते हैं। कहा है? जिस आकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य रहते हैं, भाई इतनी सी बात है। अब धर्म अधर्म द्रव्य को परिभाषित कर दिया तो गति स्थिति भी दो दो तीन तीन दफे डाल दिया। उनकी गति स्थिति में निमित्त भूत धर्म अधर्म द्रव्य व्याप्त होकर रहते हैं, सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त भूत कालानुद्रव्य सदा रहते हैं। एक काल का सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। एक क्रिया दो तरह की होती है, एक काल से कालांतर, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर। कल से हम आज में आ गए ना, तो हमें जो परिवर्तन हुआ तो इसे काल निमित्त द्रव्य इसमें निमित्त होता है, और हम यहां से वहां पहुंचे इसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर गति में धर्म द्रव्य, क्षेत्रांतर से कोई आया हो फिर स्थिति में अधर्म द्रव्य, उसके रहने में आकाश द्रव्य, और ये कौन है क्या काल द्रव्य, परिणमन में काल द्रव्य। तो यही लोक का लक्षण है। नहीं कहां पढ़ रहे अपन, ठीक है हाँ, कालानुद्रव्य सदा रहते हैं, उतना आकाश और शेष समस्त द्रव्य इन सबका समुदाय लोक है, और यही लोक का लक्षण है। जितने आकाश में जीव तथा पुद्गल की गति स्थिति नहीं होती, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नहीं रहते और कालाणु भी नहीं रहते, उतना अकेला आकाश ही अलोक है, और यही अलोक का लक्षण है।
वैसे तो द्रव्य तो एक है आकाश, तो वो तो अखंड है। लोकाकाश और अलोकाकाश के ये जो भेद जो हमने किए हैं, ये तो हमने अपने समझने के लिए किए हैं। आकाश में कोई दो टुकड़े नहीं हो गए, आकाश तो पूरा अखंड है। ये वाक्य जो अपन ने अभी पढ़ा है, इसको सब द्रव्यों की परिभाषाएं निकालकर, अकेले द्रव्यों के नाम रखकर इस वाक्य का गठन करो। बोलो बोलो बोलो, मतलब तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। क्या समझे, क्या पूछा, मेरा प्रश्न क्या है? तुम्हें समझ में प्रश्न आया होगा तो करोगे ना। क्या क्या है बोलो। माने जो मैंने बताया ना कि इसमें धर्म द्रव्य को परिभाषित कर दिया, इसको इसको काल को करा दिया, इसको जीव बदगल को परिभाषित कर दिया, है ना। तो वो नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ उन द्रव्यों के नाम मात्र लेकर उनके विशेषणों को हटाकर सीधा वाक्य बनाना है, सरल। बोलो कौन पढ़ेगा? खड़े खड़े बोलो पढ़ो। हाँ वो किताब ले लो। हाँ फिर तुम अपनी तरफ से पढ़ोगे ना, इसलिए इसमें इसकी भाषा में पढ़ो।
सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले महान आकाश में,
इसलिए हटा दो ना, हमने कह दिया हर
व्याप्त होने वाले आकाश में,
बस जितने आकाश में, आप समझ गए आप? हाँ
जीव
आकाश में,
जीव पुद्गल
अधर्म और काल,
जीव पुद्गल धर्म अधर्म
रहते हैं,
काल द्रव्य सदा रहते हैं, उसी को लोग कहते हैं।
उन सभी की परिभाषाएं हटा दो तो मतलब एक आधी लाइन में एक परिभाषा बन जाएगी। एक क्यों ऐसा मैं आपको बोलता हूं कि जब आपको बच्चों की किताब में लिखना हो तो आप इसका संक्षिप्तीकरण कैसे करेंगे? क्या ये जो आपको अमर चंद्राचार्य की टीका पढ़ते हैं, चाहे वो आत्मख्याति हो चाहे तत्व प्रदीप का हो, उसमें जो आपको कठिनाई दिखती है, वो कठिनाई सिर्फ इस बात की है कि उन्हें कहना तो सिर्फ इतना है कि जिसमें धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य कालद्रव्य जीव पुद्गल ये पांच द्रव्य रहते हैं, उतने हिस्से को आकाश कहते हैं। अब वे बताएंगे जीव कैसे, जीव कैसे, धर्म कैसा, अधर्म, और एक एक के फिर एक एक दो दो लाइन में उसकी परिभाषाएं भी वहीं पूरी डाल देंगे, तो वो वाक्य लंबा हो जाएगा और टेढ़ा भी हो जाएगा। अब आकाश जिस आकाश में, तो फिर जिस आकाश में पर्याप्त है फिर उसमें डाल दें एक कैसा आकाश जिसमें छह द्रव्य रहते हैं, ऐसा आकाश। आपने कभी पुराण पढ़े हैं, खासकर दौलत राम जी कासलीवाल के लिखे हुए, ये जानते हो दौलत राम कासलीवाल कौन थे? पंडित टोडरमल जी के जमाने में एक विद्वान थे, टोडरमल जी के स्तर के, लेकिन वे विद्वान थे प्रथमान योग के ग्रंथों का उन्हें अपनी भाषा में अनुवाद करके लिखा है, उनका नाम है दौलत राम कासलीवाल। वे राजा के यहां समझ लो आईएएस ऑफिसर जैसे थे, बड़े ऑफिसर थे, और राजा की जयपुर के राजा की तरफ से उदयपुर के राजा के यहां राजदूत बन के रहते थे, यहां के राजदूत बन के उदयपुर में रहते थे, उनकी सर्विस जयपुर के राजा की थी और वो रहते थे उदयपुर में। तो उसमें ऐसा लिखा है कि जयपुर राजा के वकील, ये वकीलों को वहां वकील बोलते थे उस वक्त, और राजदूत मतलब वो उनको इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां रहते थे। उन्होंने तीन पुराण वचन का करी, तीन पुराणों की वचन का की है, और वो सारे देश में वो ही पढ़ी जाती थी अब 25-50 वर्ष तक, और आज भी वो ही पढ़ी जाती हैं। डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने भारतीय ज्ञानपीठ से वो मूल संस्कृत के प्रकाशित करके और उनका हिंदी अनुवाद लिखकर एक एक उनका प्रकाशित किया है, लेकिन आज तक किसी ने उनका स्वाध्याय नहीं किया। विद्वान लोग कभी कभी देख लेते हैं, इसलिए कि उनके मूल में क्या है हमको विकल्प आता है, इस मामले में मूल में क्या किया। जैसे झगड़ा होता है, कोई कहता है कि वो धोती धोने की बात उनने जामबती से कही थी, और कोई कहता है सत्यभामा से कही थी, अब क्या करे। अब आप समझो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखते जाओ फटाफट। तो उसे देख, इसलिए हम देखते हैं कि उसमें जामवती है कि सत्यमती, तो एक जगह सत्यभामा लिखती है, एक तरफ जामवती निकलती है। हरिवंश पुराण में एक निकलता है, महापुराण में दूसरा निकलता है। तो हम फिर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जो जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम दे देते हैं, समझ में है ना। तो वैसे विद्वानों के काम तो आएगा वो तुम्हारे लिए, लेकिन ये सबके नहीं पढ़ते हैं तो उनका अनुवाद का क्या की क्या विशेषता है। आप लोग कहते हैं आपने पढ़े हैं ना, तो मैं जानना चाहता हूं। बोलो बोलो बताओ।
वो जब वचनिका लिखते हैं तो राम रावण से कहते भाई फिर कैसे हैं राम, तो अनंत गुणों के धारी हैं, बलवान हैं, तो फिर उनकी विशेषताएं बताते हैं एक एक करके, इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती है।
संस्कृत में तो ऐसी शैली में लिखे, कैसे जैसे अमरचंद ने यहां लिखा ना, कहते सीता ने राम से कहा, तो इस बात तो इतनी सी कहनी है, फिर वो उसमें लिखेंगे सीता के 10-5 विशेषण लगाएंगे, है ना, और फिर राम के 10-5 विशेषण लगाएंगे, और फिर कहेंगे कि सीता ने ऐसे राम से ऐसे कहा, तो फिर उसके 10-5 विशेषण लगाएंगे, कैसे होंगे ना। के तो वो दौलत राम जी क्या करते हैं, आपकी सरलता बताने की बताता हूं विधि, कि वो कहते सीता जी रामचंद्र जी से कहती भई कैसी हैं सीता, और फिर वो सारी विशेषताएं लिखेंगे। फिर रामचंद्र जी से कहती भई कैसे हैं राम, तो वे सब राम की विशेषताएं लिखेंगे। कैसे अत्यंत विनम्र भाव से कहती हुई, तो वे सारे विशेषण लिखेंगे, उनकी स्टाइल ऐसी है। आपको बताया होगा पहले मैंने या कि शांति जी ने किसी ने, कि जब आपको कोई श्लोक का अर्थ करना है तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया देखो, है ना। संस्कृत में ये सुविधा है वैसे कि कर्ता के बाद सीधी क्रिया फटाफट ले आते हैं, अंग्रेजी में भी है ना, है ना, क्रिया का प्रयोग, क्योंकि उसमें सरलता रहती है। अब अंत में 3-4 लाइन का एक वाक्य है, तब तक वो भूल जाता है कर्ता कौन है, तो क्रिया के आधार क्या रखना, आप समझ रहे ना, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। जो ऐसा लिखते हैं ना हिंदी में, ऐसा ही करते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं कहते हैं, फिर आई एम गोइंग टू मार्केट ऐसा बोलेंगे ना, तो आई एम फटाफट और गोइंग ये मैं जाता हूं बाजार, हिंदी में ऐसा कभी नहीं लिखे, मैं बाजार जाता हूं। और यदि उन्हें बाजार की विशेषताएं बतानी है तो बाजार की विशेषताएं बताएंगे, फिर मैं जाता हूं तो अपनी विशेषताएं बताएंगे, फिर जाने की व्यवस्था बताऊंगे, मैं बाई कार जाता हूं कि पैदल जाता हूं, समझ रहे ना। तो ये सब बीच में भर देंगे हिंदी में, हैं? और एक भाषा ऐसी भी है कि जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी विशेषण कहीं भी लगाओ, जैसे अंग्रेजी ऐसा नियम नहीं है संस्कृत में, लेकिन कोई भी लगाओ कहीं, इसलिए आपको अन्वय करना पड़ता है, अन्वय करना पड़ता है ना छंदों का, तो छंदानुरोध से इसलिए अन्वय करना पड़ता है कि वो उनको निकाल के सीधी, आपने एक दफे अन्वय कर दिया तो इसका अर्थ है कि आपको उसका अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि उनका अर्थ समझे बिना आप उनको सही जगह व्यवस्थित नहीं कर सकते। कहां पड़ रहा, हो गया ना। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने आकाश में क्षय द्रव्य रहते हैं अकेले उतने आकाश का नाम लोक नहीं है, अपितु उन क्षय द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। वहां पर बहुत स्पष्ट भाषा में लिखी थी, लेकिन हम समझते थे कि उतने में लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, तो यहां फिर उस बात को खोल के लिखा है। महान आध्यात्मिक कवि पंडित दौलत राम जी के ध्यान में यह बात आई थी, यही कारण है कि उन्होंने छैडाला में लिखी लोक भावना संबंधी छंद में सद्द्रव्यमयी लिखा है, लोक को सद्द्रव्यमयी लिखा है। एक और बड़ी गड़बड़ी चलती है, आपने 12 भावना अनुशीलन किताब पढ़ी होगी तो उसमें आपको ध्यान में होगी कि लोक और विश्व हम ऐसे हैं, लोक और संसार इन सब तीनों को हम एक ही समझते हैं, विश्व कहो चाहे लोक कहो चाहे संसार कहो, लेकिन इन दोनों में महान अंतर है। लोक तो छह द्रव्यों के समुदाय का नाम है और संसार सिर्फ जीव की विकारी पर्याय का नाम है। कितना अंतर है, ये एक पर्याय है एक द्रव्य की, वो भी विकारी, सब पर्याय नहीं, ख्याल में है ना। और अब हमें बस सब पढ़ते आए हैं, अनादिकाल से जीव संसार में है, अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है, फिर संसार माने दुनिया, अरे भटक रहा है यहां वहां। तो मैंने देखा कि जीव संसार में नहीं है, कि जीव में संसार है, एक पंक्ति आती है ना बारह भावना में, तो क्या अंतर आया इसमें कभी सोचा? जीव संसार में नहीं है, सब लोग यही बोलते हैं, संसार जीव में संसार है, क्योंकि जीव है द्रव्य और संसार है पर्याय, तो द्रव्य में पर्याय होती कि पर्याय में द्रव्य होता। फिर हम संसार के नाश की बात करते हैं, अरे छह द्रव्यों के समुदाय का नाम संसार है, तो उसके नाश का तो अणु बम डाल दो, एटम बम डाल दो, उससे नष्ट हो जाएगा क्यों? तो हमको संसार के नाश की बात आती है तो जमती नहीं है, हम जीव की विकारी पर्याय को संसार माने हैं, ख्याल में आए ना, तो हमारी समझ में आ जाएगा उसका हमें नाश करना है और वो पर्याय नष्ट हो जाएगी और आत्मा रह जाएगा, तो हमें नाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये संसार का मतलब क्या है? गुरुदेव के प्रवचन में आता था बार बार कि जब हम संसार में थे तब ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मैं करता था वही प्रवचन में ही मजाक करता था गुरुदेव से, अभी आप काय नहीं हो, संसार में नहीं हो, मोक्ष में हो। आप समझ में आए क्या? अरे अनंत भगवान भी संसार में है, माने बदलने वाली पर्याय है ना, और अथवा यही ये मानो कि राग देश मोह की पर्याय संसार है, तो बारहवें गुण स्थान तक संसार में है, लेकिन उसका अर्थ लोक में वही कि जब मैं परिवार में था, मां बाप के साथ रहता था, शादी तो उन्होंने की नहीं थी, तब संसार में थे माने जब गृहस्थी अवस्था में मां बाप के साथ रहता था। अभी लोक में ऐसा ही व्यवहार चलेगा और प्रवचन में भी वो बात उसी अर्थ में आएगी, और फिर आपको बारीकी से ये बात समझना पड़ेगा कि वहां यहां संसार का क्या अर्थ है, वहां संसार का क्या अर्थ है, लोक का अर्थ क्या है। तो मैंने उसमें तुलना की है कि भूधर दास की बारह भावना का लोक भावना पढ़ो और दौलत राम की बारह भावना की लोक भावना पढ़ो, दोनों याद है।
चौदह राज उतंग नभ लोक पुरुष संथा, तामे जीव अनादिते भर मत है विन ज्ञान, किन्हु ना करे ना धरे को षड द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता।
अब देखो लोक का बस तीन लोक का नक्शा बनाते आप और बोल ले लिया, मैंने सिर्फ आकार ले लिया, आप समझे, लोक का अर्थ छह द्रव्यों का समुदाय नहीं लिया, वो लोक माने अकेला आकाश नहीं लिया बल्कि वो आकार ले लिया। क्या 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 बोला था फिर पढ़ो, हुआ था पुरुषाकार है ऐसा जो लोक है, तो मतलब उस आकार को ही उनने लोक ले लिया और उसमें जीव एक घूमता रहता है। अब इनने क्या कहा कि आकाश की परिभाषा की, तो किन्हू न करे धरे को, किसी ने बनाया नहीं है, कोई धारण नहीं किए, कोई नष्ट नहीं करेगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मान्यताएं हैं उसका निराकरण किया मतार्थ को लेकर, है ना, उस छह द्रव्यमय है ये उसका स्वरूप बताया, इसे दुनिया में किसी ने बनाया नहीं है लोक को, समझे ना। संसार को कहते भगवान ने बनाया, तो संसार माने क्या, संसार माने तो रागदेश है, रागदेश को भगवान ने बनाया, तो संसार लोक माने एक। तो वो कहते हैं उनने बिल्कुल उसका स्वरूप बताया, वो भी कहते हैं सो लोक माही, ये जीव बिना संयम उसके समता प्राप्त किए घूमता है, और ये भी कहते हैं सद द्रव्य मयी न हरे को सो लोक, ऐसा लोक है उसमें कोई भी जीव समता भाव को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा इनने भी कोई बात की। हमने अपने पाठ्यक्रम में दौलत भुजरदास की भी हटा दी और दौलत राम की भी नहीं रखी। दौलत राम की तो बहुत बढ़िया है ना, फिर उसे क्यों नहीं रखी, वो रखते ना अच्छी थी, क्योंकि छह डाला सब पढ़ते हैं, सब पाठ्यक्रम में रहने वाला है, तो वो दौलत राम की तो सब पढ़ ही लेंगे। लेकिन जैतन जी छावड़ा की कोई नहीं पढ़ेगा। अब जैतन जी छावड़ा की लोक भावना पढ़ो, है ना।
लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, अर्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव विडार।
तो उन्होंने अपन ने पूरी भावना ली ना उस हिसाब से, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी हमने ये नहीं देखा कि कितने कितने कवियों ने, हमको भावना लोक भावना तो सब जगह एक सी होगी। मैंने कम से कम 112 भावनाएं देखी थी जब वो लिखी थी किताब। कितनी, आप इसे घबराना नहीं कि कहां से आएंगी सवाल। 108 तो अजमेर से एक किताब छपी थी, उसमें ही छपी थी, समझे ना। 125 कैसे हो गई। जितने भी पुराण ग्रंथ हैं सब पुराण ग्रंथों में 12 भावना गारंटी से होंगी। क्यों होंगी, कि कोई ना कोई दीक्षा जरूर लेगा, और दीक्षा लेने के पहले अपने परंपरा है कि 12 भावना भाते हैं। आता ना वो जो क्या पहली पंक्ति आती है ना पांचवी ढाल की, क्या है
के उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाव।
अब वो चिंतेंगे तो जहां भी निकाल लो। अब जिसका मन लगा होगा बढ़िया किया होगा हम ना, तो उसको हमने निकाल लेते हैं। जैसे पारस पुराण में अब भूजादास जी ने की, किसी ने की, किसने अपने जितने पुराणों में अपन जी जो पढ़ते रहते हैं ना, वैराग भावना और चक्रवर्ती की और फलाने की इसकी उसकी, वो सब ऐसी उन पुराणों के बीच में ही आई हैं। हमको अच्छी लगी तो हमने निकाल के अलग अलग कर ली, जिनवाणी में छपा ली और हम उन्हें पढ़ने लगे। उनने कोई अकेली वाला भावना नहीं लिखी थी, अकेली बैराग भावना नहीं लिखी थी। उसके संदर्भ पर हम ध्यान धाए तो वहां क्लियर लिखा है, बैठो वज्र दंत राय अपनी सभा लगाए। वज्र दंत चक्रवर्ती अपनी सभा को लगा करके बैठे हुए थे, और फिर उसने वहां पर उनको ऐसा चिंतन किया। तो इसके पुराण की कहानी हो गई कि नहीं हो गई। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमको सबको इस तरह से अध्ययन करना चाहिए। अभी आपके कोर्स में रखे हुए हैं ना पुराण, कोई पढ़ता ही नहीं है। अरे एक दफे इस दृष्टि से तो देख लो, तुम पंडित हो सारी जिंदगी, फिर तो पढ़ना ही नहीं है। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, कि वो पुराण कैसे हैं, क्या स्टाइल है। ऐसा होता है कि जैसे कि अभी आपने पुराण है, तो उस पुराणों पर जो पढ़ाया जाता है ना यूनिवर्सिटियों में, बस वो हम दो व्याख्यान दे देंगे और उसमें सारी ये विशेषताएं बता देंगे आपको, तो बाकी फिर आपने पढ़ लिया तो हो गया काम। वो कोई उपन्यास कोर्स में है, मान लो गोदान उपन्यास है 600-700 पेज का है, तो 600-700 पेज पढ़ाए तो कुल 100 पीरियड तो मिलते हैं। तो गोदान प्रोफेसर भी पढ़ेगा, विद्यार्थी से कहेगा तुम पढ़ के आओ, दोनों जने पढ़ के आएंगे तो प्रोफेसर एक दो व्याख्यान उनकी विशेषताओं पर बोल देगा, बस हो गया पढ़ा दिया। ये जो अपने यहां रखते हैं ना कोर्स में रैपिड रीडिंग, ये बोलते हैं कि आपने स्वयं अध्ययन की, वो ऐसा है अध्यापक उसमें ऐसे एक दो व्याख्यान दे सकते हैं, देना चाहिए, विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए। जैसे आप कुछ भी कहो, आपने लिख दिया, कभी स्वयं पढ़ के आए तो पढ़ तो लेगा कहानियां, लेकिन यदि अध्यापक उन पर वो सब एंगल बताए कि इसमें ये विशेषता है, इसमें ये विशेषता है, इसमें करेक्टर की विशेषता है, इसमें भाषा का सौंदर्य है, इसमें उस भाषा में इस बात को प्रकट किया गया है, इसमें क्या नाम कि चाजोगी ने फूक किया और कोढ़ दूर हो गया और कोढ़ मिट गया, ऐसा जैन धर्म में नहीं है, जो इस कहानी में ऐसा प्रदर्शित किया जाता है तो इसमें निषेध किया गया है, बिना शिष्यों को कैसा होना चाहिए, स्वयं की अकल से काम भी करना चाहिए और विनय भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये सब चीजें वो बता देगा। इनकी ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसी नहीं कि वो एक एक पंक्ति पढ़ रहा है और एक एक पंक्ति का अर्थ बता रहा है। तब वे कोर्स में इतनी इतनी किताबें रखी होती हैं, समझ में आए ना आपकी, में तब भी रखी जाती हैं। अभी कोई न पढ़ाने वाला समझता, न पढ़ने वाला समझता, क्या करें है? माने उसमें जैसे मैंने बताया ना काशी बालकिन लिखा, तो किस स्टाइल में लिखा, कैसे लिखा, क्या किया, वो बात मैं आपको बताई ना। चलो, यहां विशेष ध्यान देने की बात यह है कि आकाश द्रव्य में, आकाश में छह द्रव्य रहते हैं, अकेले उतने आकाश का नाम लोक नहीं है, है ना, अपितु उन छह द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। महान आदि हो गया ना, आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इस बात को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखी है कि छह द्रव्यों का समूह लोक है। बहुत से लोग लोकाकाश और लोक में अंतर नहीं कर पाते, वे लोकाकाश और लोक को एक ही समझते हैं, जबकि उन दोनों में अंतर है। लोक विश्व छह द्रव्यों के समूह का नाम है और लोकाकाश अकेले आकाश द्रव्य का वह भाग जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं। इन दोनों में लोकाकाश और लोक कहने में इतना अंतर है। अभी इतना माथा मारा कि आपने बताया था कि लोककार दादा ने यह बताया था, तो लोकाकाश का भी यही अर्थ बताएंगे आप। लोकमय लोकाकाश ही तो है, अब वो नहीं है, समझ गए ना, वो लोक का ही अर्थ है, लोकाकाश का नहीं है। वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में छह द्रव्यों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है, जिसमें अभी तक जीव अजीव और लोक अलोक की चर्चा हुई, दो वर्गीकरण अपन ने किए। अब तीसरा, अब इस गाथा में क्रियावान और भाववान की बात करते हैं। क्रियावान द्रव्य और भाववान द्रव्य, इसकी चर्चा करते हैं। पढ़ो गाथा।
उपादि दिभंगा पोगल जीव पगस लोगस परिणामा जायन्ते संघादादो वभेदादो जीव अर पोदगलमय इस लोक में परिणमन से भेद से संघात से उत्पाद व्यय ध्रुव भाव हो।
अभी अपन जो कह रहे हैं ये बताएंगे कि क्रियावान और भाववान द्रव्य की विशेषता, लेकिन गाथा में तो ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, करते ही नहीं करते दिखाई देते हैं। देखो, जीव अर पुद्गल मई इस लोक, ये लोक क्या है, जीव और पुद्गल मई है, मन छह द्रव्य मई है ना, तो जीव और पुद्गल तो है ही उसमें। इस लोक के परिणमन से एक पॉइंट, और भेद से संघात से उत्पाद व्यय ध्रुव भाव हों, कहते छह द्रव्यों में उत्पाद व्यय और ध्रुव होते हैं, छह द्रव्यों में होते हैं ना, तो अब आकाश द्रव्य में उत्पाद व्यय कैसे घटेंगे, धर्म द्रव्य में कैसे घटेंगे, अधर्म द्रव्य में कैसे घटेंगे, तो कहते इन द्रव्यों में परिणमन तो हो ही रहा है ना, जिसमें काल द्रव्य निमित्त है, तो पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और वस्तु की द्रव्यता, तो इसमें सिर्फ परिणमन से घटेंगे। अब बाकी के दो द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, तो जीव और पुद्गल में ये परिणमन से तो घटेगा ही, लेकिन इसमें ये पुद्गल जो हैं इनका भेद और संघात, भेद संघात समझते, स्कंद परमाणु मिलकर स्कंद बनता है और फिर स्कंद टूटते हैं, तो कहते हैं भेद और संघात से इससे भी उत्पाद व्यय होते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया, उनमें क्षेत्र से चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होता है, निष्क्रिय समझे ना, इसलिए उनमें अकेले परिणमन से घटेंगे और इनमें परिणमन से भी घटेंगे और भेद से और संघात से भी घटेंगे, क्योंकि ये परमाणु मिलकर स्कंद भी, परमाणु स्कंद तो बनेंगे ही, स्कंद टूट के परमाणु बनेगा, लेकिन एक बड़ा स्कंद टूट के दो छोटे स्कंद बन जाएंगे, फिर उसके और दो टुकड़े हो जाएंगे तो चार बन जाएंगे, कितने ही बन जाएंगे, असंख्य परमाणु हैं तो 50 तरह के स्कंद भेद से भी बन सकते हैं और फिर वे आपस में मिल जाएं तो संघात से भी बन सकते हैं। अब ऐसा जीव और पुद्गल का कैसे, जीव तो जीव दूसरे जीव से मिलता नहीं है, तो पुद्गल तो दूसरे पुद्गल में मिल जाता है, स्कंद तो होता है लेकिन दो जीवों का स्कंद नहीं होता, लेकिन पुद्गल के साथ इसका वो होता है मिलावट, शरीर और आत्मा मिलता है, आत्मा ये शरीर में दो आत्मा रहे, अनंत आत्मा एक साथ रह जाते हैं ना निगोजिया के शरीर में, तो भी वे दो बिल्कुल आपस में नहीं मिलते, उनका वहां कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हैं ना आपकी में, तो भेद से और संघात से और अपर्णमन से भी इनमें, तो इसका अर्थ ये हो गया, देखो कि अभी जो टीका लिखेंगे ना उसमें बाद वो स्पष्ट हो जाएगी, अर्थ तो स्पष्ट आपके ख्याल में आ गया ना। देखो इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, द्रव्यों में इस अपेक्षा भी भेद पड़ता है कि कुछ द्रव्य भाव और क्रिया वाले होते हैं पर कुछ द्रव्य मात्र भाव वाले ही हैं। अब भाव वाले ही है कौन कौन, आकाश काल धर्म अधर्म, सिर्फ भाव, भाव माने परिणाम। अब देखो भाव का अर्थ द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, पर्याय भी होता है, तीनों भी होता है, और आत्मा में राग द्वेष के भाव, निर्मल परिणाम भाव वो भी होता है, और इसको परिणाम शब्द का भी आता है प्रयोग, कह रहे बहुत निर्मल परिणाम है, उसके भाव बहुत अच्छे हैं, तो इन शब्दों के प्रयोग बहुत जगह होते हैं, इनको हमें अपनी बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा कहां क्या है। पुद्गल और जीव भाव वाले भी हैं और क्रिया वाले भी हैं, माने पुद्गल और जीव परिणमन भी होता है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते भी हैं, जीव सुरक्षित नरक जाता, यहां जाता वहां जाता, ये पुद्गल भी यहां से वहां मिलते हैं, है ना, तो ये क्रिया, इनको क्रिया बोलते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने को क्रिया बोलते हैं, और परिणमन काल से कालांतर में बदलने को परिणमन बोलते हैं, है ना, क्योंकि वे परिणाम द्वारा भेद व संघात द्वारा उत्पन्न होते हैं, समझ में आ गया, टिकते हैं और नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं और टिकते हैं माने द्रव्य और नष्ट होते हैं माने व्यय, शेष द्रव्य मात्र भाव वाले ही हैं क्योंकि वे परिणाम द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं, उनमें परिणमन के द्वारा पर्याय के द्वारा भी उत्पाद व द्रव्य होता है। हमें अभी तक उत्पाद व द्रव्य पर्याय की अपेक्षा ही घटित करते रहे, भेद संघात वाले को कहां करते हैं, हम समझते बस वही बात है, इसमें भाव का लक्षण परिणाम है और क्रिया का लक्षण परस्पंद है, परस्पंद माने कंपन, ये प्रदेश ऐसे कपेंगे माने इसका ही नाम कंपन नहीं, यहां से दूसरे क्षेत्र में गए, दूसरे यहां आए चले, ये सब कंपन ही है, माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना उसको सब कंपन बोलते हैं, है ना, भाव वाले तो सभी द्रव्य हैं क्योंकि परिणाम स्वभाव वाले होने से परिणाम के द्वारा अन्वय और वितरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं, है ना, पुद्गल भाव वाले होने के साथ साथ क्रिया वाले भी हैं क्योंकि परस्पंद स्वभाव वाले होने से, परस्पंद माने यहां वहां चलने का, होने से परस्पंद के द्वारा पृथक पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं मिले हुए बुद्धगण पृथक पृथक हो जाते हैं, इस अपेक्षा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। जीव भी भाव वाले होने के साथ साथ क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परस्पंद स्वभाव वाले होने से परस्पंद के द्वारा नवीन कर्म नोकर्म रूप उद्गलों से भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होने से कर्म नोकर्म रूप उद्गलों के साथ एकत्रित हुए जीव बाद में पृथक पृथक होने की अपेक्षा से उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। इसको मनुष्य से देव हो गया, देव से फिर इस तरह से भी घटित कर सकते हैं। जो इसको शांति से पढ़ोगे तो वो ही अर्थ निकलेगा, बात स्पष्ट हो गई। अभी हैं अपने पास 5 मिनट, तो एक पेज पढ़ा जा सकता है, तो फिर अपन कल अगली गाथा पढ़ सकेंगे। यहां एक प्रश्न संभव है कि यहां लोक को जीव पुद्गलात्मक क्यों लिखा है, वह तो षड द्रव्यात्मक है, षड द्रव्यमयी, और यहां लिखा जीव पुद्गलात्मक लोक में, ऐसा लिखा ना। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में यह कहते हुए देते हैं कि लोक तो षड द्रव्यात्मक ही है, यहां उपलक्षण से जीव पुद्गलात्मक कह दिया है। मैंने इसमें ज्यादा बारीकी में नहीं जाना, क्योंकि जीव पुद्गल चलते हैं, उनमें क्रिया होते हैं, इसलिए हमने उनकी मुख्यता से इनको जीव पुद्गलात्मक कह दिया। इस वर्गीकरण को आचार्य जयसेन सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्यों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ द्रव्य सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय, तत्वाशुद्ध भी करता है निष्क्रियाणी से। साथ में यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि जीव और पुद्गलों की अर्थ और व्यंजन दोनों पर्यायें होती हैं, शेष द्रव्यों की मात्र अर्थ पर्यायें होती हैं। अभी व्यंजन पर्याय बोलते हैं मनुष्य से देव हो गया, नारकी हो गया, अब धर्म द्रव्य तो देव और नारकी होता नहीं है, आकार तो उनके बदलते ही नहीं है, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक ही आकार में रहेंगे वो, चाहे लोक का हो, चाहे लोकाकाश का हो, चाहे पूरे आकाश का हो, चाहे धर्म अधर्म द्रव्य का हो, चाहे काल द्रव्य का हो, इसलिए उसमें वो नहीं होता। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अर्थ पर्याय प्रति समय प्रणमन रूप होती हैं, और जब जीव शरीर को त्याग कर दूसरे भव में शरीर ग्रहण करता है तो विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। इसी प्रकार पुद्गलों में भी विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं, इसी कारण जीव और पुद्गल को सक्रिय दिव्य कहा जाता है। मुक्त जीवों के स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, क्योंकि उनके भेद ही होता है संघात नहीं, माने जब वे मोक्ष में गए तो वे सब अलग उतने ही, उसके बाद न भेद होता न संघात होता है। उक्त गाथा में यह बताया गया है कि जीव और पुद्गल द्रव्यों को छोड़कर शेष चारों द्रव्यों में क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन रूप क्रिया नहीं होती। ये जो बातें सब लिखी हैं वो सब स्पष्ट पहले हो चुकी हैं और आप लोग पहले से भी जानते हैं, इसलिए ज्यादा समय इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें काल द्रव्य निमित्त होता है, ऐसी प्रणमन रूप क्रिया को सभी 6 द्रव्यों में होती है, पर जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है, ऐसी क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन क्रिया, जिसमें अधर्म निमित्त होता है, ऐसी गमन पूर्वक ठहरने की क्रिया जीव और पुद्गलों में ही होती है। इसी कारण जीव और पुद्गलों को सक्रिय द्रव्य कहते हैं। उस क्रिया के अभाव में शेष द्रव्यों को निष्क्रिय द्रव्य कहा जाता है। प्रणमन रूप क्रिया तो सभी द्रव्यों में होती ही है, पर उसके कारण किसी भी द्रव्य को सक्रिय या निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। कल मैं इस पेज को तुम अच्छी तरह घर पर पढ़ना और इसमें से मैं प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता लगे तुमने घर पर पढ़ा है कि नहीं। सभी द्रव्यों में एक भगवती शक्ति है, भाववती शक्ति है, जिसके कारण प्रणमन रूप क्रिया होती है। जो निरंतर वो बदलता है ना, तो कि दूसरे द्रव्य के कारण नहीं बदलता, निमित्त के कारण नहीं बदलता, उसमें एक भाववती शक्ति है, उसके कारण निरंतर प्रणमन करता है। तथा जीव और पुद्गलों में भाववती शक्ति के साथ साथ क्रियावती शक्ति भी होती है, तो सेत से क्षेत्रांतर होना, दूसरे से मिलना बिछुड़ना, वो तो अपनी क्रियावती शक्ति से करता है, इसमें दूसरे का कोई योगदान नहीं है। जिसके कारण परस्पंद अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन रूप हरण चरण रूप क्रिया होती है। काल द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो मात्र निमित्त होते हैं, प्रणमन रूप क्रिया और परस्पंद रूप क्रिया तो भाववती और क्रियावती शक्ति के कारण होती है। ये तत्व का ऐसा स्वरूप समझने से चित्त में स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। ये पंक्ति क्यों लिखी, क्या लिखा, क्या कह रही है? नहीं भूल मत जाना कि गेह तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, गेह तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है और उसमें एक गेह का स्वरूप है, सही द्रव्यों का कोई सामान्य स्वरूप था और ये विशेष स्वरूप है, हर एक द्रव्य का अलग अलग बता रहे ना, तो इससे गेह का स्वरूप समझने से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता ऐसा निर्णय होने से हमें स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। हम बहुत गंभीर समय तो हो गया लेकिन एक बात कहे बिना ये बात अधूरी रह जाएगी कि हम बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करें कि हम निरंतर इस बात से भयाक्रांत रहते हैं कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना दे, इससे भय डरते रहते हैं और मैं दूसरे का बिगाड़ सकता हूं ऐसी मान्यता के कारण दूसरों को धमकाते रहते हैं। तू समझ ले, यदि तूने मेरी बात नहीं सुनी तो इस बाउंड्री में रह नहीं पाएगा। क्यों क्यों नहीं रह पाएगा बाउंड्री में? क्योंकि बाउंड्री में मेरा अधिकार है, आकाश द्रव्य का नहीं है। आकाश द्रव्य मुझे रहने को स्थान देगा कि नहीं देगा, मतलब मेरे हाथ में है ऐसा समझकर हम दूसरों को डराते धमकाते हैं और दूसरे मेरा बुरा कर देंगे ऐसे के मारे डरते हैं। समझिए ना, ये दोनों चीजें इस तत्व ज्ञान को समझने से हमारे जीवन में से जा सकती है, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि हमने तो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी डरते देखा है और डराते देखा है, शास्त्र में पढ़ा है ना, अरे चक्रवर्ती धमका रहे हैं तुम ऐसा कर नहीं था मैं फिर को ऐसा कर दूंगा, है ना, डरा रहे और डरते भी हैं कहीं ऐसा नहीं किया जाए नहीं हो जाए। तो वो जो है नहीं डरते की जो बात कही जा रही है वो अनंतानुबंधी भय के अर्थ में कही जा रही है और डरना जो होता है उनके वो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय के उदय में होता है। ये सिद्धांत आप विद्यालय के विद्यार्थियों को गहराई से समझना चाहिए तो दोनों तरह के जो कथन आएंगे आप कहीं गड़बड़ाएंगे नहीं। ये भी आएगा डरते हुए भी दिखाए जाएंगे और निर्भय हैं, सात भय से रहित होता है, सब पे भय मुक्त मुक्का सम्मा दिष्टि हमंती निजराधिकारियों में गाथा आती है ना, आजकल जो सुबह चल रहा है वो निजराधिकार में तक आ गए ना अपन, ये अभी सात भय तक नहीं आए ना। तो सात भय से जो रहित होते हैं वो अनंतानुबंधी सात भयों से रहित होते हैं। मैंने सामने वाला गोली मारेगा युद्ध में मैं मारा जाऊंगा ऐसा भय तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कसार के उदय में उनको होता है, लेकिन इससे मैं खत्म ही हो जाऊंगा, मेरा आत्मा ही खत्म हो जाएगा, जाल जल के इतना खतरनाक हथियार है ऐसा भय उन्हें नहीं होता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता। मैंने एक वाक्य कहा था ना, घबराना नहीं और ये अशुभ भी मानना वस्तु स्वरूप समझना है ना, कहीं अनुभव गिर जाए तो सब कुछ नाश हो जाएगा ना, क्या नाश हो जाएगा, ये पुद्गल जिस आकार में है आकार बदल जाएगा, सारे पुद्गल के परमाणु रहेंगे तो जीव तो नष्ट हो जाएंगे ना सब, अजी साहब ये जीव भी रहेंगे, जीव भी संसार में कहीं चले जाएंगे सुरंग नरक कहीं भी मनुष्य में जहां जाना होगा चले जाएंगे, तो नष्ट तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये जो अनंतानुबंधी का भय है जो नष्ट हो जाने का उसका अभाव हुआ जी, ऐसा नहीं कि अनुपम गिरेगा तो कुछ नहीं होगा माने स्मारक ऐसे ऐसा बना रहेगा ऐसा धोखा मत, ऐसा अर्थ नहीं समझना समझ गए ना कि मैं ऐसे ही जिंदा रहूंगा ऐसा अर्थ नहीं समझना, समझ गए ना, शरीर के परमाणु भी कहीं ना कहीं रहेंगे और मैं भी कहीं ना कहीं रहूंगा, लोक में से खत्म नहीं होऊंगा, इस अर्थ को बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में रखना चाहिए नहीं तो बहुत गड़बड़ी होगी।